स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र परिसर में हम लोग आदि गुरु भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित प्रबोध सुधाकर नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। इस ग्रंथ के जीवन में उतारने लायक तीन महत्वपूर्ण प्रकरण हैं। पहला प्रकरण है वैराग्य, दूसरा प्रकरण है बोध, तीसरा प्रकरण है भक्ति। भक्ति माने चिंतन। तो दो प्रकरणों का कथन करने के बाद तीसरे प्रकरण का चिंतन चल रहा है, जिसमें यह सगुण रूप से दिखने वाला जो संसार है ना, वह वास्तव में निर्गुण निराकार ब्रह्म ही है। सगुण रूप से जो संसार हमें अव्यक्त हो रहा है, जो जगत अव्यक्त हो रहा है, उस जगत की भी वास्तविकता यथार्थ में क्या है? निर्गुण निराकार ब्रह्म ही है। तो जगत का प्रतिनिधित्व वहां भगवान से करा रहे हैं। किससे? कृष्ण के शरीर से। किसके? तो कृष्ण कह रहे हैं, मतलब परमात्मा का एक स्वरूप बताया, परमात्मा सबके प्रिय नहीं, परमात्मा सबके प्रति एक भाव रखते हैं। तो संशय हुआ कि दुर्योधन और अर्जुन में विषम भाव क्यों रखा? तो कहा कि परमात्मा ने दुर्योधन और अर्जुन में विषम भाव कोई रखा नहीं है। जिसको जो चीज चाहिए था भगवान ने उसको वह चीज दिया, क्योंकि भगवान तो एक वृक्ष की तरह है। वृक्ष का किसी से न कोई राग होता है, न किसी से कोई द्वेष होता है। उस वृक्ष से जो व्यक्ति जो मांगना चाहता है या जो लेना चाहता है, वह वृक्ष उसको वह वस्तु दे देता है। कोई कच्चा फल खाता है, कोई पक्का फल खाता है। किसी खट्टा ही पसंद है तो क्या करेगा, पकने नहीं देता, आम कच्चा तोड़ लेगा। किसी को छाया चाहिए, किसी को पत्ता चाहिए, किसी को लकड़ी चाहिए, जिसको जो चाहिए वो देता है। तो परमात्मा जिसको जो चाहिए वह सबको परमात्मा देते हैं। कहते परमात्मा से ही सारा जगत पैदा हुआ है, ये मैंने श्रुति के वाक्यों में सुना है। कृष्ण से जगत तो पैदा दिखा नहीं, तो कहा आपको नहीं दिखा लेकिन मेरे को दिखा है। कहां दिखा है? जब ब्रह्मा जी को मोहित करते वक्त जब ब्रह्मा जी ने सारी गायों को ग्वाल बालों को चुरा लिया, तो जो कुछ वहां मिला, मतलब भगवान ही क्या बन गए थे? सारी गायें, बछड़े, ग्वाल बाल, उनकी पगड़ी, उनके डंडे, उनके जूते, उनकी अंगूठियां, जो उनके गले में जो माला, जिसका जो रूप था, जो स्वभाव था, जो वस्त्र थे, सब कुछ रूपों में कौन थे? ये सारे संसार के सब रूपों में कौन है? वही परमात्मा। जैसे स्वप्न में आपका जितना संसार दिखता है, उस स्वप्न के सारे संसार में कौन हो? आप ही तो हो। इस तरह से जागृत के भी सारे संसार में सत्ता किसकी है? आप परम ब्रह्म की ही सत्ता है। फिर एक और भाव आया था, वही भेद दृष्टि वाला। तो कहा भगवान ने कहीं किसी में भेद नहीं दिया है, दिखा है। बहरा, अंधा, लंगड़ा, लूला, लंबा, छोटा, एक रूप वाले, अनेक रूप वाले, जितने भी रूप वहां दिखे थे, किसको? ब्रह्मा जी को। किसको? अरे भाई, ग्वाल वाले सब एक ही रूप वाले होंगे, सब अलग अलग होंगे? अरे कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, कोई लंगड़ा होगा। गांव में तो बच्चे भी लंगड़ा हो जाते हैं, नहीं होते? अरे हो ही जाते हैं। कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं पांव टूट गया, तो गांव में डॉक्टर के यहां थोड़े जाते हैं, नीम हकीम के यहां गए और प्लास्टर बांध दिया, जुड़ तो जाता है लेकिन एक पांव हल्का सा, चार अंगुल छोटा हो गया, तो सारी जिंदगी लंगड़ा लंगड़ा हो जाता है। ऐसे कोई अंधा भी होगा, कोई बहरा भी होगा, बहुत ज्यादा शरीर पे मैं बुद्धि नहीं होती गांव वालों, किसी की नाक बह रही होगी, किसी का कुछ बह रहा होगा, इन सब रूपों में कौन थे? तो भगवान सबको एक समान सत्ता दे रहे हैं कि किसी में कम दे रहे हैं, किसी में ज्यादा दे रहे हैं, बताओ? फिर भी आपके मन में संशय आया कि भगवान हमारे ऊपर नहीं है, हमारे में नहीं है, तो आपकी एक भ्रांति है। वास्तव में भगवान सबको एक सत्ता दे रहे हैं। एक किसने देखा, कब देखा? अरे भाई थोड़ा सा ध्यान देना कल की कथा में। जब ब्रह्मा जी यहां देखे, मतलब छिपा के आए, छिपा के आए, देखे, अब देखे कृष्ण की क्या हालत होगी, रो रहे होंगे, हाय मैं क्या करूं, घर वालों को क्या जवाब दूंगा। जब यहां लौट के आए तो देखते हैं ब्रह्मा जी यहां तो कृष्ण के चेहरे पे कोई शिकन है ही नहीं, वो ग्वाल वाले, वह गायें, वो सब वैसे कैसे वहां मौजूद है। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा शक हुआ कि कहीं वहां से भाग के तो नहीं आ गई होंगी, तो वहां गए कहां, जहां छिपा के लाए थे, तो देखे कि वहां भी गायें ग्वाल वाले उसी रूप में बैठे पड़े हैं। तो कहा कहीं डुप्लीकेट चाबी तो नहीं है, क्यों चाबी खोल के ले आकर चले गए होंगे, तो एक ताला और जड़ दिया उस कमरे में। अब फिर वहां से बाहर आए तो फिर देखते हैं कि ग्वाल वाले गायें उसी रूप में है, फिर वहां जाते अपने जहां छिपाए थे, फिर यहां आते हैं, दो तीन बार धक्के खाए लेकिन उनको लीला समझ में आई नहीं। तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं, क्या देखते हैं, तो ऊपर ऊपर दृष्टि से देखोगे तो ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे, ब्रह्मा जी को भी वही दिखाई दे रहा है, नाम रूप जाति गुण क्रिया, लेकिन थोड़ा ध्यान की दृष्टि से देखा, तत्व की दृष्टि से देखा तो जितने रूप दिखते रहते, जितने गाय दिखते थे, सारे गायें क्या दिख रही हैं, चतुर्भुज रूप ही दिख रहे हैं। तो आप भी इस सारे संसार में थोड़ा सा आंख बंद करके देखो, थोड़ा सा चिंतन करके देखो, तो सारा संसार ही परमात्मा रूप ही दिखेगा। ऊपर ऊपर से देखोगे तो ब्रह्मा जी की तरह आप भी मोहित हो जाओगे, सच बताऊं। और जब ब्रह्मा जी की हालत हो जाती है इसी, तो हम सबकी हालत क्या होगी आप कल्पना कर लो। नहीं, कल इस विषय में हमने कई चीजें बताई आपको, जैसे ऊपर ऊपर से देखो तो जिसके पास बड़ा धन पद प्रतिष्ठा है लगता बड़ा सुखी है, ऊपर ऊपर देखो तो, लेकिन उस व्यक्ति से पूछो जिसके पास पूरी पद प्रतिष्ठा तो है, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया है उबली हुई लौकी के अलावा कुछ छूना नहीं है, उसके सामने नौकर, हमने देखे हैं इसलिए आपको बता रहा हूं, आंखों से देखा हूं, 3 किलो दूध आता है, 4 किलो दूध आता है, मक्खन इतने निकलते हैं, लेकिन मक्खन छू नहीं सकते। हमारा निमंत्रण रोज था, हमें भी इतना इतना मक्खन डाल दे हुए, हमने कहा मैया मक्खन खिलाओगी तो आना बंद कर दूंगा। नौकर खा रहे हैं मक्खन, लेकिन वो बेचारी मक्खन खा नहीं सकते हैं। अब सोचे ना, अब उसको कितना दुख होता होगा, आप कल्पना करो, उसके दुख की कल्पना करो। बहुत कुछ कमाता है, बहुत कुछ पद प्रतिष्ठा है, लेकिन फिर भी खाने के लिए क्या है, बॉयड लौकी। उसके दुख की बारे में आप सोच नहीं सकते हो। बच्चों को घूमते हुए थोड़ा जो गरीब है, दौड़ते हुए घूमते हुए सीढ़ी पे चढ़ते हुए देखते हुए, उसके पास 10 गाड़ियां होवे लेकिन घुटना एकदम जवाब दे दिया है, एक कदम चल नहीं सकता है, बताओ उसके दिल मन की अवस्था। ऊपर से देखो तो सुखी दिखता है, इन गहराई से विचार करो तो उससे दुखी इंसान है। सही बताऊं आपको, अमेरिका आपको सबसे पावरफुल दिखता है, नहीं दिखता, सही बताना, क्यों भाई? सबसे पावरफुल यदि कोई कंट्री है तो कौन है, पक्का। लेकिन सबसे डरा हुआ यदि कोई देश है तो वह कौन है, ये मालूम है, नहीं मालूम है? अभी भाई एक गुजरात का बंदई था, वृद्ध था, वो जा रहा था घूमते हुए, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, उसने कहीं झांक लिया, कुछ कर लिया, थोड़ा इंडियन की आदत भी होती है, उनको डर लग गया कोई आतंकवादी होगा, और तुरंत फोन कर दिया, तुरंत पुलिस आई। अरे कुछ तो विवेक करो भैया, एक उम्र का भी वो देखो, उसको इतनी तेज से गुस्सा मारा बेचारा क्या हुआ, गिर गया और उसको पोलियो का अटैक पड़ गया। तो सबसे डरा हुआ इंसान, कांपा हुआ इंसान कौन है, एक बच्चे के हाथ में भी नकली पिस्तौल देखता है तो उसको भी विवेक नहीं करता, उसको मार डालता, बताओ। तो सबसे डरा हुआ इंसान दिखाई देता है यदि, कहां से, थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से विचार करो तो कौन दिखता है? और ऊपर ऊपर से क्या दिखता है? सबसे बड़ा पावरफुल है, लेकिन गहराई से अरे भाई आप खुद सोचो, यदि पावरफुल होवे तो उसको सिक्योरिटी की आवश्यकता है क्या? कोई पावरफुल होवे, लेकिन वो 50 सुरक्षा के बीच में ही बाहर निकलता है, इसी से सिद्ध हो रहा है कि अकेले कहीं जा नहीं सकता है। इसका मतलब वो डरा हुआ इंसान है? नहीं, इंसान है। और जिसको आप कहते हो डरा हुआ है, वो तो अकेले सारी दुनिया में घूम लेता है, उसको कोई फर्क पड़ता है ही नहीं है। तो भरतरी शतक में है ना, वैराग्य में व अभयम, एक वैराग्य ही है जो आपको क्या कर देता है, अभय बनाता है। अन्यथा संसार के सारे लोग कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में डरे ही हुए हैं। आपको याद होगा श्लोक कौन सा? वैराग्य शतक का। भोगे रोग भयम, भोग है तो रोग का डर। कुले चुति भयम, ऊंचा बड़ा खानदान है तो नीचे गिरने का डर। वित्ते दीपालाद भयम, धन है तो इनकम टैक्स वालों का डर, कब छापा मार देंगे, कब चोरी ले जाएंगे। आजकल तो एक दिन ऐसे बैंक वाला पूछे, महाराज आपके अकाउंट में किसी का पैसा रख दें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है क्या? हमने कहा क्यों भाई रखना चाहते हो, तो भी डर है कि किस मार्च है, इसलिए ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने के लिए किसी न किसी अकाउंट का इस्तेमाल करना नहीं करना बता। माने दैन्य भयम, यदि आपका बहुत सम्मान है तो दीनता का भय। बले रूप भयम, बलवान है तो शत्रु का डर। अरूपे जराया भयम, बहुत सुंदर रूप है तो किसका डर है? बुढ़ापे का डर है, झिल्लियां पड़ जाएंगी। सही बताऊं, बहुत ज्यादा सुंदर लोग में ना बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाता है, भी अजमा लेना। काले रंग में कुछ दिखता ही नहीं है, गोरे रंग में ना जरा सा भी पड़ जाएगा तो दूर से झलक जाएगा। शास्त्रीयवाद भयम, बहुत ज्यादा विद्वान बन गए तो वाद विवाद का डर। गुणे खल भयम, गुण है तो दुष्टता, कब उसमें अवगुण आ जाए कुछ पता नहीं है। अकाये कृतांतात भयम, अशरीर है तो यमराज का भय। सर्वे वस्तु भयानुतम भूई, हमें तो संसार में हर वस्तु भय से ही ग्रसित दिखती है। यदि अभय मात्र है तो कौन है? निराम वैराग्य मेवा अभयम, वैराग्य ही एकमात्र क्या है जो आपको अभय दे सकता है। अन्यथा दुनिया में कहीं देख लो हर व्यक्ति डरा हुआ है। जो ऊपर से हमने देखा है, आप भी अजमा लेना, जो बहुत खुशी होता है अंदर से कहीं कहीं गम बहुत ज्यादा होता है, वो उस गम को न छिपाने के लिए हंसता है। सच बता रहा, जो बहुत सस्ता समझ देखना है गांव में या कहीं भी शहरों में देखना, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं न, कहां रहते हैं? झुग्गी झोपड़ियों में। वो बाल स्टाइल में काट लेंगे, कान में क्या पहन लेंगे? कुंडल पहन लेंगे, बगिया शर्ट वगैरह, इतनी चमक धमक से बाहर निकलते हैं, गूगल वाला चश्मा। सही बताओ, वो अपने आप की, अपने भीतर की गरीबी को छिपाने के लिए बाहर का आडंबर करते हैं। और जो व्यक्ति स्वयं सुंदर हो तो उसको सुंदरता दिखाने के लिए कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है, कहीं न कहीं उसके अंदर अपनी कुरूपता का एहसास होता है, इसके कारण अपनी कुरूपता को छिपाने के लिए इस सुंदरता का आवरण किया करते हैं। नहीं जो स्वयं में सुंदर है उसको दिखाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। वही एक शेख शादी का है, जिसकी उंगलियां अपने आप में सुंदर है, उसको फिरोजी कुछ होता है क्या, फिरोजी की अंगूठी है कि पहनने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, बल्कि उसकी चमक में उंगलियों की क्या होती है, कुरूपता छिप सी जाती है। लेकिन जिसकी उंगलियां खुद ही सुंदर हैं, उसको सजने की कोई आवश्यकता रही नहीं जाती है। तो यदि कोई दिखा रहा है तो कहीं न कहीं उसके भीतर उसकी कमी का एहसास है ही। इसलिए ऊपर से देखो तो बड़ा धनी दिखता है, ऊपर से देखो तो बड़ा सुखी दिखता है, ऊपर से देखो तो बड़ा बलवान दिखता है, लेकिन अंदर से यह सब डरे हुए इंसान हैं, यह सब कमजोर इंसान हैं, यह सब कुरूप इंसान है। एक कथा सुनिए, नहीं सुनी आप लोगों ने, खलील जिब्रान एक हैं, नाम नहीं सुना है, खलील जिब्रान हैं, लेबनान के एक दार्शनिक हुए हैं। कहते हैं सुरूपता और कुरूपता दोनों मिली, दोनों कहते हैं जन्नत से आई नीचे, ऐसा दृष्टांत आता है, कौन है कुरूपता और सुरूपता। लेकिन यहां का प्रदूषण ने उनके वस्त्रों को क्या किया, थोड़ा मलिन, चेहरे वेहरे पे थोड़ा दाग धब्बे लग गए, तो दोनों ने कपड़े उतारे और स्नान करने के लिए किसी तालाब में दरिया में घुस गए, और दरिया से जब बाहर कुरूपता चालाक थी, कुरूपता आई तो उसने सुरूपता के कपड़े पहने और चली गई, और जब थोड़ी देर के बाद बेचारी सुरूपता आई तो देखे मेरे कपड़े तो गायब हैं, अब बिना वस्त्र के रहना तो मुश्किल है ना, तो उसने मजबूरन किसके कपड़े पहने, कुरूपता के कपड़े पहने, वो भी इधर चली गई, तो सुरूपता किसके कपड़े में है, कुरूपता के कपड़े में है, ध्यान देना, अब कुरूपता किसके कपड़े में है, सुरूपता के कपड़े में है, लेकिन कुरूपता को ही लोग सुरूपता समझ करके उसका तो सम्मान करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो वास्तव में स्वरूप है लेकिन जिसके पास वस्त्र कैसे हैं, कुरूपता के हैं, उसका लोग तिरस्कार करना शुरू कर देते हैं, उसका लोग अपमान करना शुरू कर देते हैं। आज दोनों घूम रही हैं, कौन है सुरूपता और कुरूपता, लेकिन किसके कपड़े में, कपड़े बदल गए हैं, सुरूपता के पास कुरूपता के कपड़े हैं और कुरूपता के पास किसके कपड़े हैं, सुरूपता के कपड़े हैं। लोग स्वाभाविक है पहली दृष्टि में तो कुरूपता को ही क्या समझ लेते हैं, सुरूपता समझ लेते हैं, तो ब्रह्मा जी की तरह हम भी पहली दृष्टि में इस सारे संसार को नाम रूप वाला समझ लेते हैं, अनेक ढंग का समझ लेते हैं, लेकिन यही दृष्टि जब सूक्ष्म हो जाती है तो आपको इस कुरूपता में भी सुरूपता माने उस परमात्मा की पहचान हो जाती है, तो सारे संसार में भी आप किसको देख लोगे, उस परमात्म सत्ता को देख लोगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं ब्रह्मा जी भी जब क्या हो जाते हैं, मोहित तो हो जाते हैं, अनेक दृष्टि देख लेते हैं, तो हमारे जैसे लोगों की बात ही क्या है, तो हम लोग क्या करें, क्या करें, थोड़ा सा ध्यान दो तो एक दृष्टि आपको दिख जाएगी। जगत का आकर्षण विकर्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे रोज में कहता हूं, वस्त्र है, किसी वस्त्र के प्रति हमारा आकर्षण है, किसी वस्त्र के प्रति हमारा क्या है, विकर्षण है। ऊपर ऊपर दृष्टि में जाओगे तो किसी वस्त्र को छूने के लिए दौड़ोगे, किसी वस्त्र को फेंकने के लिए दौड़ोगे, लेकिन तत्वतः थोड़ा विचार करो तो दोनों वस्त्रों में क्या दिख जाएगा, सूत ही दिखेगा, एक ही धागा दिखेगा, एक ही कपास दिखेगा, तो एक ही कपास दिख गया तो आकर्षण विकर्षण, इससे होने वाला राग और द्वेष, राग द्वेष से होने वाला संस्कार और संस्कार से होने वाला जन्म मृत्यु, सारे चक्कर आपके समाप्त हो जाएंगे। तो सारे संसार को देखो, सारा संसार किसके रूप में दिख रहा है, एक परमात्म रूप में दिख रहा है, परमात्मा की सत्ता किसी और दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। इसी को मनीषा पंचकम में भगवान शंकराचार्य भी स्तुति करते हुए, शंकर जी की स्तुति करते हुए यही कहते हैं, ब्रह्म एव अहम इदम जगत च सकलम चिन्मात्र विस्तारितम सर्वम चेतद अविद्या त्रिगुणया अशेषम मया कल्पितम इत्थम यस्य दृढ़ामति सुखतरे नित्ये परे निर्मले चांडालो अस्तु सत्व द्विजो अस्तु गुरुर इति एषा मनीषा मम। एक कहानी तो सुना ना आप लोगों ने, मनीषा पंचकम वाली। मनीषा पंचकम का एक दृष्टांत आता है। तो भगवान शंकराचार्य मणिकर्णिका घाट से स्नान करके आ रहे थे काशी गली में, थोड़ा उनमें अपने ब्राह्मणत्व का हल्का अभिमान सा हो गया। तो भगवान शंकर उनके अभिमान को तोड़ने के लिए एक चांडाल का भेष धारण किए और चांडाल का भेष धारण करके चार कुत्ते लेकर के सामने खड़े हो गए। इनका वो चांडाल, अफसर अफसर अफसर, हट जाओ हट जाओ, कहीं तू छू गया तो मेरे को नहाना पड़ेगा। छाया भी पड़ गई, चलो नहाना पड़ेगा। वहां तो छाया क्या, काशी में जाके देखो, वहां छू ही जाएगा। काशी कितनी बड़ी गलियां हैं, एक आदमी चार कुत्ता घुस गया तो कहां से निकलोगे बताओ। तो मुझे नहाना पड़ेगा। तब उस समय भगवान शंकराचार्य शंकर रूपधारी चांडाल बोलते हैं, अन्नमयाद अन्नमयम अथवा चैतन्यात चैतन्यमेव दूरी कर्तुम वांछसि किम ब्रूहि गच्छ गच्छ गच्छेति। हे प्रभु, यह बताओ कि आप अन्नमय को अन्नमय से अलग करना चाहते हो अथवा चैतन्य को चैतन्य से? तो कहो अन्न को अन्न से भी अलग नहीं कर सकते, कर सकते हो बताओ? भाई तुम्हारा भी शरीर अन्न का विकार है, पृथ्वी का विकार है, मेरा भी शरीर किसका विकार है? पृथ्वी का विकार है। कुत्ते का भी शरीर किसका विकार है? पृथ्वी का। तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से हम एक दूसरे से छुए हुए हैं, नहीं छुए हुए बताओ? अरे भाई आप लोग हवन करते नहीं करते? तो हवन में सब आहुति डाल देते हो क्या? तो क्या करते हो? एक दूसरे को छू लेते हो। और छू भी न लेने वाला हो तो कलावा, चारू बहन कहती कलावा फैला दो सबको। कलावा माने रस्सी होती ना, जो उसको सब छू लो तो सबका मान लिया जाएगा। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो सब एक दूसरे से छुए हुए हैं कि नहीं बताओ? नहीं छुए हैं। अरे भाई उस समय गांव में कहते हैं कोई शुद्ध जाति वाला व्यक्ति कुएं में पानी भरने जाए तो कुएं की जगत पे यदि नहा रहा है तो कहते हैं कुआं गंदा हो जाएगा, वो पानी लेकर के नीचे नहाए। अब बताओ नीचे नहाए या ऊपर नहाए तो भी छुआ होगा कि नहीं छुआ है बताओ? तो इस दृष्टि से देखा जाए कि सब अन्न के ही विकार हैं, तो एक दूसरे से सब क्या है, छुए छुए हैं। किसको? पृथ्वी से। पृथ्वी को अलग करोगे क्या? पृथ्वी को पृथ्वी से अलग करोगे क्या? अथवा चैतन्य को चैतन्य से अलग करोगे? तुम किससे किसको अलग करना चाहते हो? किसने कहा? चांडाल भेषधारी किसने? भगवान शिव ने। तब शंकराचार्य ने हाथ जोड़ा और पांच श्लोकों में पूरा स्तुति करते हैं। किसकी? उस चांडाल की स्तुति करते हैं कि ब्रह्म एव इदम जगत च सकलम, यह ब्रह्म एव हम, ब्रह्म ही मैं भी हूं, और इदम च सकलम, यह सारा का सारा संसार ब्रह्म ही रूप है। चिन्ह मात्र विस्तारितम, चैतन्य मात्र का विस्तार ही है सारा संसार। अविद्या के कारण, त्रिगुणात्मक अविद्या के कारण यह सारा संसार मेरे ही स्वरूप पर कल्पित है, मैंने ही इसकी कल्पना कर लिया है। जिस किसी की भी ऐसी मति होवे सुखतर परम ब्रह्म में, वही मैं हूं, वह चांडाल हो अथवा वह ब्राह्मण है, वह मेरा गुरु है, मैं उसको नमस्कार करता हूं। ऐसे और भी बताया, जागृत स्वप्न सुप्तिषु स्फुत्वरा या संविद उज्जिम्भते, जागृत में स्वप्न में सुसुप्ति में जो ज्ञान है उज्जिम्भित माने विस्तरित हो रहा है, अव्यक्त हो रहा है। ब्रह्मादि पिपीलिका अंत तनुषु, ब्रह्मा से लेकर के चींटी पर्यंत शरीरों में जो साक्षी रूप से विद्यमान है वही मैं हूं, ऐसी जिसकी दृढ़ बुद्धि है वह व्यक्ति चांडाल हो अथवा ब्राह्मण हो, वह मेरा गुरु है, उसको मैं नमस्कार करता हूं। तो सब के रूपों में किसकी सत्ता दिख गई? ब्रह्म की सत्ता। ब्रह्म की सत्ता के सिवा दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। शरीर भी है ही नहीं। शरीर भी क्या है? अब एक आगे आएगा एक उदाहरण, कपूर देखा ना? कपूर, कपूर देखा है? कौन सा कपूर? आज वाला कपूर नहीं, ये वाला नकली है, इसमें मोम मिलाते हैं जिससे इसमें एक गंध भी आती है। जो शुद्ध वाला कपूर होता है ना, डली के रूप में आता है। किसके रूप में? उसको डिब्बे में बंद करके रखो और रुई भी डाल के रखो तो भी गायब हो जाता है एक छह महीने, 15 दिन 20 दिन बाद 25 दिन बाद। देखा ना वाला कपूर, बड़ी प्यारी खुशबू आती है। तो पूरी की पूरी डली खुशबू रूप है, खुशबू से अलग है बताओ। खुशबू सूक्ष्म है, इन सूक्ष्म ही किसके रूप में हो गया है, कपूर की डली के रूप में, एक धोखे के रूप में हो गया है, डली के रूप में हो गया। ऐसे वह सूक्ष्म ब्रह्म ही किसके कारण इन सब रूपों में अव्यक्त हो गया है, लेकिन वास्तव में अव्यक्त होता हुआ भी वह अपनी स्थूल रूप में है नहीं, वह किस रूप में है, सूक्ष्म ही रूप में है। अब एक संशय आया था जिस पर कल हम लोगों ने प्रश्न किया था, जवाब आज देंगे। महाराज जी, आत्मा अभोक्ता है, क्या है, ब्रह्म कैसा है, भोक्ता का भोक्ता है, आत्मा ताव द अभोक्ता तथैव ननु वासुदेवश्चेत नाना कैतव यत्नैः पर रमणी भी कथम रमते। आत्मा तावद अभोक्ता, आत्मा तो अभोक्ता है, ननु वासुदेवश्चेत, यदि वासुदेव भी आत्मा है, वासुदेव माने श्री कृष्ण, वासुदेव माने क्या हुआ, श्री कृष्ण भी क्या है, अभोक्त आत्मा है, तो कृष्ण को भी क्या होना चाहिए, अभोक्ता होना चाहिए, क्योंकि आत्मा अभोक्ता है। अब कृष्ण भी यदि आत्मा ही है, वासुदेव भी यदि आत्मा है, तो उनको भी क्या होना चाहिए, अभोक्ता होना चाहिए। लेकिन उन्होंने नाना कैतव यत्नई है, अनेक प्रकार के छल छदमों के द्वारा, पर रमणी भी कथम रमते, दूसरी के रमणियों के साथ, स्त्रियों के साथ उन्होंने रमण क्यों किया, कैसे किया, उनको क्या आवश्यकता पड़ गई थी, किसको, कृष्ण को। बात समझ में आ रही है, देखो ये प्रश्न कल हमसे जो भक्त होता है उसको थोड़ा बुरा भी लगता है कि भगवान के ऊपर ऐसा कपट क्यों, ऐसा आक्षेप क्यों कर रहे हो। कल हमसे कोई माता एक कह रही थी कि भगवान ने तो गोवर्धन उठा लिया तो एक कर दिया, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात हो गई, तो उनके ऊपर हमें आक्षेप उठाने का कोई अधिकार है ही नहीं, ऐसा कहते हैं। लेकिन भाई मैं नहीं, परीक्षित जी महाराज ने भी भागवत में ये आक्षेप उठाया है, आप पढ़ लेना, दसवें स्कंध में परीक्षित जी महाराज ने भी ये आक्षेप उठाया है कि भगवान धर्म की यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति, धर्म की स्थापना के लिए एक मर्यादा में व्यक्ति को बांधने के लिए उतार लेते हैं, और भगवान खुद कहते हैं हमें कर्म करने से कोई प्रयोजन है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं, क्योंकि यदि मैं कर्म न करूं तो मुझे कर्म न करता हुआ देख करके सारा संसार क्या बन जाएगा, आलसी बन जाएगा। यदि यद श्रेष्ठ तत्तद, जो जो श्रेष्ठ व्यक्ति कर्म करता है उसी कर्म को देख करके दूसरा व्यक्ति अनुचर करता है, तो मुझे कर्म करता हुआ देख करके दूसरा व्यक्ति कर्म करेगा, भगवान यही तो कहते हैं, नहीं कहते हैं बताओ, तो भगवान के इस कर्म को देख करके इस कर्म का अनुकरण दूसरा भी व्यक्ति करेगा तो पतित हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और कई कथावाचक लोग ये भी बोल देते हैं कृष्ण ने जो कहा वो करो, राम ने जो किया वो करो, ऐसा बोलते नहीं, लेकिन कृष्ण स्वयं क्या कहते हैं, जो मैं कर रहा हूं ना करो, ध्यान देना, भगवान खुद कह रहे हैं, आप ध्यान देना क्या कह रहे हैं कि यदि यद श्रेष्ठ तरह क्या है श्लोक, हाँ, यदि यद आचरत श्रेष्ठ तब तद देवे तरोजन है, जैसे जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है उसी आचरण को देख करके दूसरा व्यक्ति भी आचरण किया करता है। अब भगवान खुद अपना उदाहरण देते हैं कि कर्म करने में मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, मैं कर्म करना भी नहीं चाहता हूं, कर्म करके कुछ मुझे पाना भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं, क्यों करता हूं, दूसरे को दिखाने के लिए कि मुझे कर्म करता हुआ देख करके दूसरा व्यक्ति कर्म करेगा, आलसी नहीं बनेगा। तो इससे यही सिद्ध हो रहा है कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझे देख करके तुम कर्मानुष्ठान करो नहीं करो, भगवान इतना ही मना कर रहे हैं ना कि जो मैं कर रहा हूं तुम करना, लेकिन भगवान के करने का भाव आप लोगों ने गलत समझा है। मैं बार बार कहता हूं, पुराणों में भगवान ने जो प्रसंग उठाए हैं उन प्रसंगों का भाव बहुत गहरा है, हम उस भाव को समझते नहीं हैं, अब बस उठाने चल देते हैं किसको, गोवर्धन को। लेकिन गोवर्धन भी कौन है आप बताओ, मैं रोज कह रहा हूं गोवर्धन कौन है, जानते, गोवर्धन, गो माने हुआ इंद्रियां, इंद्रियां जहां रह करके पुष्ट होवे बड़ी होवे उसका नाम क्या है गोवर्धन। तो इस शरीर में रह करके इंद्रियां क्या होती हैं पुष्ट होती हैं, तो सबसे बड़ा गोवर्धन कौन है ये शरीर, तो इस शरीर को उठाने वाला कौन है। तो अब बताओ गोवर्धन आप उठाए हो नहीं उठाए हो, भगवान त्रेता ने द्वापर में ही गोवर्धन को उठाया ऐसी बात नहीं है। आज भी जितने शरीर हैं सबको उठाने वाला कौन है, अरे गोवर्धन की बात नहीं कर रहा हूं, सारे ब्रह्मांड को भी उठाए हुए कौन है। हम लोग स्पेस में हैं कि हमारे नीचे कोई बेस है, क्यों भाई बोलो, हमारे नीचे माने इस पृथ्वी के नीचे कोई बेस है क्या। भले आप लोग को शेष नाग पे टिका हुआ है, शेष नाग भी एक अध्यारोप ही है। शेष नाग माने क्या हुआ आत्मय, शेष नाग माने क्या हुआ आत्मय के ऊपर टिका हुआ है। हम लग रहे पूरी पृथ्वी किस पे टिकी हुई है, शेष नाग किसके ऊपर टिके हैं, पाताल कहां टिका होगा। तो हम सब एक स्पेस में है कि नहीं है, स्पेस माने खाली जगह में इसे घूम रहे हैं। तो इस सारे वस्तु को उठाने वाला कोई न कोई शक्ति ताकत है, नहीं ताकत है तो वह ताकत किस कौन सी ताकत है, वही ब्रह्म की सत्ता से ही सब टिके हुए हैं। यदि ब्रह्म की सत्ता न हो तो हम कुछ टिक ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम कृष्ण के भाव को गलत समझते हैं। जैसे मैंने वस्त्र अपहरण की बात बताई, तो वस्त्र माने वासना, वस्त्र माने क्या हुआ वासना। जब तक आप अपनी सारी वासनाओं का हरण नहीं कर लेंगे, जब तक आपकी सारी वासनाएं समाप्त नहीं हो जाएंगी, तब तक आपको कृष्ण का साक्षात्कार होगा नहीं। क्योंकि वासनाएं ही तो कृष्ण और आपके बीच में क्या बनाई हुई है, एक पर्दा बना हुआ है, नहीं बना है। इसलिए उस वासना को हटा दो तो आप कृष्ण रूप ही हो जाओगे। उस वासना के कारण हम अपने आप को क्या समझे हैं, जीव रूप समझे हैं, और उसको क्या माने हैं, ब्रह्म रूप समझे हैं। और इस वासना को हटा दो तो आप भी क्या बन जाओगे, लेकिन वासना को आपने क्या समझ लिया, वस्त्र। और वस्त्र को चुराना शुरू कर दो, इस वस्त्र के चुराने से नहीं काम होगा। मैंने पहले बताया कि उपनिषदों में जो अर्थ गूढ़ रूप से छिपा हुआ है, भगवान उसी अर्थ को दिखाने के लिए एक लीला का सहारा लेते हैं। सारा संसार परमात्मा रूप है, लाख समझा के थक जाएं, लेकिन आप मानते नहीं हो। लेकिन भगवान का वह रूप देखा कि भगवान ही गाय बन गए, भगवान ही खूर बन गए, भगवान ही गोबर बन गए होंगे, नहीं बने होंगे, गाय गोबर कर रही होगी तो कौन बना होगा, वो भगवान ही बने होंगे, पगड़ी भी भगवान बन गए, जगत चेतन सब रूपों में किसकी सत्ता है। तो उस लीला के द्वारा भगवान ने अपनी सर्वरूपता को अव्यक्त किया है। अब यहां प्रसंग आया, क्या प्रसंग आया, कि भगवान ने अनेक छल छद्मों के द्वारा पर रमणियों के साथ रमण क्यों किया, जबकि उनको किसी के साथ रमण करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वो तो सुख स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। ये तो तुच्छ व्यक्तियों के लिए चाहिए कि हमें संसार से सुख मिल रहा है, वह तो परम संतुष्ट हैं, उनको संसार के विषय भोगों में कोई सुख तो दिखता है ही नहीं। उन्होंने रमण क्यों किया और रमण करने के लिए कपट आदि का भी सहारा क्यों लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। उसका संशय तो वहां मैंने बता दिया था, भागवत में तो वेद व्यास जी ने जो बताया है, थोड़ा सा समरथ को नहीं कच्छ दोष गोसाई वाला भाव, तुलसीदास जी वाला ही भाव रखा है कि अग्नि है सूर्य है, इसमें कुछ भी करो तो उसको उसका पाप लगता नहीं है। तो भाई ये बड़े लोग हैं, ये कुछ भी करे तो इनको पाप नहीं लगता। लेकिन सही बताऊं ये बात मेरे को भी कम जमी वहां पे, लेकिन यहां जब मैं पढ़ा ना भगवान शंकराचार्य की दृष्टि, तो बात इतनी बढ़िया समझ में आ गई कि वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। सुंदरम अभिनय रूपम कृष्णम दृष्ट्वा विमोहिता गोप्यः तम अभिलष्यन्तो मनसा कामाद विरह व्यथा प्रापुः। भगवान कृष्ण का जो रूप था वह कैसा है, सुंदरम रूप कैसा है, सुंदर रूप है, और अभिनव रूपम ऐसा रूप है जो कभी पुराना होता ही नहीं, नित नया ही दिखता है, नित नया ही। अभिनव रूपम, अभिनव रूप वाले श्री कृष्ण को देख करके कहते हैं गोप्या विमोहिता, गोपियाएं ही गोपिकाएं ही भगवान को देख करके मोहित हो गए हैं। भगवान नहीं मोहित हुए हैं, ध्यान देना कि भगवान मोहित हुए हैं। कौन मोहित हुआ है, गोपिकाएं ही मोहित हो गईं, और मोहित होकर के तम अभिलष्यंत भगवान को ही पाने की अभिलाषा करना शुरू कर दी, भगवान हमें मिल जाए, भगवान हमें मिल जाए। कहां से अभिलाषा कर रही है? मनसा। कहां से? मन के द्वारा हर पल वह भगवान की ही अभिलाषा करना शुरू कर दी। कामात विरह व्यथा प्रापु, अकामातुर होकर के विरह व्यथा में व्याकुल हो जाती थी। कौन? कृष्ण का गोपिकाएं। ध्यान देना, कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कृष्ण देखना, जब तक कहां रहे? वृंदावन में रहे तो वृंदावन में रहे, और मथुरा चले गए तो एक वृंदावन मथुरा की दूरी कितनी है बताओ? यदि कृष्ण पागल बन गए होते तो पहुंच जाते? नहीं पहुंच जाते बताओ। जब हमारे तुलसी बाबा इतनी बड़ी रात में, घोर रात में, इतना बारिश हो रहा है, लाश को नाव समझ करके अपनी प्रेसी या पत्नी के पास पहुंच सकते हैं, तो कृष्ण को वहां पहुंचने में क्या जाता? जबकि कृष्ण तो सर्वसमर्थ एक राजा भी थे, लेकिन कृष्ण को उनके मिलने न मिलने से कोई लेना देना। और यही नहीं, कृष्ण ने जब मथुरा को छोड़ा, कहां पहुंचे? द्वारिका पहुंचे, तो मथुरा भी पूरी तरह छूटा। और इतना ही नहीं, कृष्ण जिस समय जहां रहे हैं, यदि द्वारिका से आए हैं पांडवों की सहायता करने के लिए, तो भगवान कृष्ण के पास भी कितनी रानियां थी? 16,100। लेकिन बताओ, कभी भी अर्जुन से कभी चर्चा की हो क्या कि आज बहुत याद आ रही है? अर्जुन तो दोस्त थे ना, कभी न कभी कुछ तो बोल सकते? नहीं बोल सकते। अपने दिल की बात तो बोल सकते? नहीं बोल सकते। हमारी पत्नियों की बहुत याद आ रही थी, हमारी माँ बाप की बहुत याद आ रही है, बहुत दिन हो गए, अब चलना चाहिए, उनके बिना मैं जी नहीं सकता। भगवान ने कभी कुछ बोला है क्या? मेरे बता दो। इसी से सिद्ध हो रहा है कि परमात्मा पूरी तरह से असंग है, परमात्मा पूरी तरह से आत्मतृप्त हैं, उन्हें अपनी तृप्ति के लिए संसार के किसी विषय भोग की कोई आवश्यकता है ही नहीं। इसलिए इतना बड़ा राज्य भी मिला, राज्य के दौरे में भगवान कभी शामिल हुए ही नहीं। उग्रसेन को बैठा दिया, कहीं किसी को बैठा दिया, कहीं किसी को बैठा दिए, खुद राजा बन सकते? नहीं बन सकते थे। अरे सांप को समन करने में भी भगवान क्या थे? सामर्थ्य थे। जो दूसरे को राजा बना सकता है, क्या खुद नहीं बन सकता था क्या? लेकिन भगवान को राज्य में कोई सुख थोड़ी दिखता है, इसलिए उन्होंने राजा बनने का कोई अपेक्षा किया ही नहीं, कहा यह सेवक बनकर काम कर लो, बहुत बढ़िया है, चलते हम यहां। तो एक गोपिकाएं ही पागल हो गई हैं, किसके लिए? कृष्ण के लिए। एक चीज मैं बता रहा था, अभी कल परसों चर्चा हो रही थी, महापुरुष लोग भी बहुत माल खा लेते हैं, है नहीं? उनको स्वाद बुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी यदि हमारे खाने से आपको थोड़ी खुशी मिल जा रही है तो चलो भाई हम खा ही लेते हैं। हमें भी कभी कभी बुरा लगता था, महात्मा लोग शादियों में चले जाते हैं, उनको शादी जाने आने में क्यों प्रयोजन है, लेकिन मेरे यदि आपके यहां आ जाने से यदि आपको खुशी हो जाती है तो मेरे को जाने आने में तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, लेकिन आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपके यहां उपस्थित हो गया। तो इसी तरह से एक गोपिकाएं ही भगवान के विरह व्यथा में व्याकुल होकर के, गोपिकाएं क्या करती हैं? गच्छन्तः, चलते फिरते, तिष्ठन्त्यः, बैठे हुए, गृह कृत्य पराश्च, घर के काम धाम को करते करते, भुंजाना खाते, किसनम बिना अन्य विषयम समक्षम अपि जात न अबिंदन। कहता कृष्ण के बिना दूसरी कोई वस्तु उनको दिखाई नहीं देती थी, सामने वस्तु पड़ी भी होवे, सामने वस्तु पड़ी भी होवे, फिर भी कोई वस्तु सब में उन्हें कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देता है, सब में उन्हें कृष्ण ही दिखाई देता है। ए भाई देखो क्या है, विरह वाले ज्यादा जानेंगे, इसका अनुभव उन्हीं को होगा, जिसका किसी से आसक्ति हो जाए, अटैचमेंट हो जाए, तो उसको हर पल उसी की आवाज सुनाई देती है, उसी का रूप दिखाई देता है, चलते फिरते खाते बैठते उसको रात भर नींद भी नहीं आती, सपने में भी क्या देखता है? उसी का ही रूप देखता है, कोई वस्त्र दिख गया तो उसी का वस्त्र दिखता है, तो सब रूपों में वो उसको कौन दिखाई दे रहा है? कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण दिखाई दे रहा है। किसको? गोपिकाओं को। फिर क्या होता है, दुःसह विरह भ्रांत्या स्वपतिन दद्विशुः तरुण नरांश्च पशून हरि अयम इति सुप्रीता सरभ समालिंग्यान चक्रुः। ऐसी उनके मिलन की विरह व्यथा हो गई, उस विरह व्यथा से उत्पन्न जो भ्रम हुआ, उस भ्रम से वह अपने पतियों से, वृक्षों से, मनुष्यों से, पशुओं को देख करके यही हरि हैं, यही हरि हैं, यही कृष्ण हैं, ऐसा जान करके प्रेम विभोर हो करके उन्हीं का ही आलिंगन कर लेती थी और समझती थी कि हम किसको आलिंगित हो रही हैं, श्री कृष्ण को आलिंगित कर रही हैं। ये ध्यान देना है, बहुत बड़ी चीज है। उठाती थी गोद में किसको, गाय के बछड़े को, और उनको लगता था मैं किसको उठा रही हूँ, कृष्ण को उठा रही थी। गले लगती है किसको, वृक्ष को, और लगता था मैं गले किसको लग रही हूँ, श्री कृष्ण को गले लग रही हूँ। ऐसी विरह व्यथा के साधकों की स्थिति हो जाती है। सुना नहीं सुना है, हमने भाई अनुभव नहीं किया है, आप लोग जानते होंगे। हमने एक दो कहानियां पढ़ी हैं, जैसे उनकी कहानी थी राम तीर्थ की, स्वामी राम तीर्थ। तो राम तीर्थ स्वामी थे, तो वो भी कृष्ण के पहले बहुत भगत थे, बाद में बहुत भयंकर वेदांती बने। पहले कृष्ण की याद में तो रात रात क्या करते थे, रोते थे, उनके तकिया भी गीले हो जाते थे। तो एक दिन काले नाग को देखा, और नाग को देखते ही क्या समझा, कृष्ण आया है, और जाके गले लगे। ये कहो नाग भाग गया, चला गया, क्योंकि वो पशुओं को भी डर लगता है। ऐसे ही गौरांग देव को देखा होगा, कौन स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, वो समुद्र को देखे काला काला, तुमको क्या दिखाई देवे, कृष्ण है। अब समुद्र में क्या करें, कूद पड़े, कूदे ही नहीं कूदे। अब बताओ समुद्र में कूदे, चलो बहे, वो क्या मल्लाहों ने उनको क्या किया, निकाल लिया, बचा लिया, जो भी था, लेकिन वो कूदे समुद्र में, कूदे कि कृष्ण को गले लगाने के लिए कूदे हैं। उनके आपकी दृष्टि में समुद्र में कूदे हैं, लेकिन उनसे पूछो कहां कूदे हैं, समुद्र में नहीं कूदे हैं। उन्होंने क्या किया, कृष्ण को गले, कोई वृक्ष देखें, कोई पशु देखें, तो कभी कभी क्या करते थे, उस पशु को गले लगा ले, में उस वृक्ष को गले लगा ले, में हिरण को गले लगा ले, में तू ही कृष्ण है, ऐसी भावना उनकी मजबूत हो गई थी, नहीं हो गई थी। तो ये भाव प्रधान व्यक्तियों में विशेषता होती है, ये ध्यान देना। तीन तरह के व्यक्ति होते हैं, एक भाव प्रधान, दूसरा क्रिया प्रधान, और तीसरा विवेक प्रधान, ज्ञान प्रधान। तो प्रेमपुरी वाले थोड़ा सा कौन से हैं, विवेक प्रधान है। देखो इन्होंने बता दिया, मुंबई के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन और कुछ लोग होते हैं भाव प्रधान है। कौन है, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस कैसे थे, भाव प्रधान व्यक्ति थे। वो देवी को भोजन तो खिला रहे हैं, उनको मूर्ति नहीं दिखती थी, क्या दिखता था, साक्षात देवी खा रही है, खा भी नहीं रही है, भोजन नीचे गिर रहा है, कपड़ा गंदा हो रहा है, कई अन्य पुजारियों ने कहा है पगला गया है, इसको मंदिर से क्या करो, बाहर निकालो, रोज कपड़ा गंदा करता है। लेकिन जो उस आश्रम का मालिक था, कोई राजघराने का था ना, हाँ हाँ, तो उन्होंने, हाँ रानी दास मंगी, उन्होंने कहा कुछ भी हो, भले कपड़े ही तो गंदे कर रहा है, गंदे मतलब कपड़े ही जूठे हो रहे हैं, लेकिन ये जिस भावना से पूजा कर रहा है, तुम लोगों में वैसी भावना है ही नहीं। तो उन्होंने इस भावना से पूजा किया, किस भावना से, देवी की भावना। एक बार उन्होंने भावना किया, मीरा की भावना किया, तो मीरा बनकर के धोती पहनना शुरू कर दिए, वो बजाना शुरू कर दिए, तो उनको हर जगह क्या दिखाई देना शुरू कर दिया, कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देना शुरू कर दिया। एक बार उन्होंने भावना किसकी बनाई, हनुमान राम की भावना से, हनुमान जी की भावना से पूजा करना शुरू कर दिए, तो हनुमान जी की तरह बंदर की तरह उछल कूद करना शुरू कर दिए, सारे संसार में उनको क्या दिखता था, राम ही राम दिखता था। फिर मुसलमान बनकर के उन्होंने पूजा किया, चारों वक्त नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, तो उनको क्या दिखा, मोहम्मद साहबी दिखना शुरू कर दिए। ईसाई बनकर के पूजा किया, तो उन्होंने क्या देखा, ईसा मसीह को देखा, जीसस को देखा। तो कहने का मात्र है कि भावना प्रधान व्यक्ति जैसी भावना करता है, उसी रूप में उसको सारा संसार दिखना शुरू कर देता है। इन भावनाओं में सबसे गहरी भावनाएं किसकी होती हैं, कामनी की है ना, माँ बाप की भावना होती है लेकिन बच्चे में होती है, लेकिन जैसे जवान होता है तो सबसे गहरी भावना किसकी हो जाती है, स्त्री की अथवा पति की। तो उस समय उसकी विरह की व्यथा तो इतनी व्याकुल होती है, रात की नींद गायब हो जाती, सपना आएगा तो सपने में वही पुरुष आएगा, देखेगा तो भी उसके वस्त्र को देखेगा और उस वस्त्र में भी वस्त्र टंगा हुआ दिखेगा और टंगे हुए वस्त्र में उस व्यक्ति की कल्पना करके पहना हुआ वस्त्र दिख जाएगा, कुर्सी पर खाली देखेगा, किसकी कुर्सी है, उसके प्रियतम की कुर्सी है, वो कुर्सी खाली रहेगी लेकिन जो उससे प्रेम करता है उस कुर्सी को देखते ही उस पर बैठा हुआ वो क्या करेगा, पुरुष दिख जाएगा और जाकर उसको क्या करेगा, आलिंगित करेगा और उसको समझेगा कि मैं किससे आलिंगित हो रहा हूं, अपने प्रियतम से। लेकिन दूसरा व्यक्ति कहेगा पागल, लेकिन उससे पूछो वह पागल है क्या, वह तो किससे आलिंगित हो रहा है, उस कृष्ण से। तो अवस्था किसकी है, बोलो भाई। तो गोपिकाएं किससे गले, भगवान किससे गले लगे हैं, किसी से गले लगे क्या, किसी को उठाया क्या, किसी को बुलाया क्या? तो ये सारी गोपिकाएं अपने पतियों को, वृक्षों को, अन्य पुरुषों को, पशुओं को क्या समझती हैं, हरि अयम इति, यही हरि हैं, यही कृष्ण हैं, यही कृष्ण हैं। अब प्रेम भाव से डूब करके उन्हीं का ही आलिंगन किया करती थी। अर्थात ध्यान देना, रामतीर्थ की भाषा में, स्वामी रामकृष्ण परम रामतीर्थ की भाषा में, आप अब भी अपनी पत्नी से आलिंगित होते हो तो ये मत कहा करो मैं पत्नी से आलिंगित हो रहा हूं, बस पत्नी के रूप में आए हुए हम आलिंगन किससे कर रहे हैं, उस परमेश्वर से ही कर रहे हैं। हम माँ के गले मिलते हैं तो माँ से गले नहीं मिल रहे हो, किससे गले मिल रहे हो, माँ के रूप में आए हुए उस परमेश्वर से गले मिल रहे हो, बेटे से मिल रहे हो तो बेटे के रूप में आए हुए किससे, उस परमेश्वर से गले मिल रहे हो। जिससे भी हम गले मिल रहे हैं वह कौन है, परमेश्वर ही है। तो ऐसी भावना से वह गोपिकाएं मिलती हैं, उस परमेश्वर को किसी से मिलने की कोई आवश्यकता, क्योंकि वह परमेश्वर तो सबसे पहले ही मिला हुआ है, आपसे मिलने के पहले भी वह क्या है, सबसे मिला हुआ, उसके बिना तो किसी कोई सत्ता हो ही नहीं सकती है। तो अभी परमेश्वर आपके गले लगा है नहीं लगा है, बताओ, नहीं लगा है, मानना नहीं है भाई, मानना कहां है, गले लगा है, वो न हो तो बताओ क्या कर सकते हो आप, बताओ। उसी की सत्ता से आप सत्ता मान हो रहे हो, पहले वही गले लगाता है और फिर दुनिया बाद में गले लगती है। सबसे पहले गले कौन लगाता है, वह परमेश्वर ही लगाता है, इसलिए वह परमेश्वर पूरी तरह से असंग है, अभोक्ता है, उसको आपको छोड़ने में पकड़ने में जरा सा भी देर लगती ही नहीं है। आप कैसे कह सकते हो महाराज जी ऐसा गोपिकाओं का भाव रहा होगा, कहते हैं भाई वेदव्यास जी ने खुद कहा है, कापिचक तिसंगायंती कस्याचित पूतनायंत्याह अपिबत स्तनम इति साक्षात व्यासो नारायण प्राह। कहते विरह में भगवान का चिंतन करते हुए वह गोपिकाएं भगवानमयी हो जाती हैं। यह गोपिकाएं लीला करते हुए कोई गोपी पूतना बन गई, क्या बन गई, पूतना बन गई, और दूसरी क्या बन जाती थी, कृष्ण बन जाती थी और उसका स्तन पीने लगी, कोई छकड़ा बन गई, किसी ने बाल कृष्ण बन करके रोते हुए उसको एक पांव धक्का मार करके उसको नीचे गिरा दिया, कोई गोपी कृष्ण बन जाती है और कहती अरे ब्रजवासियों तुम आंधी पानी से मत डरो, कोई गोवर्धन धारण करने का नाटक करती और अपने ऊपर चादर तान लेती, कोई काली नाग तो कोई उसके ऊपर चढ़ करके क्या बन जाती, कृष्ण बन जाती, और कहते ए दुष्ट सर्प तू यहां से चला जा, मैं तो दुष्टों का दमन करने के लिए पैदा हुआ हूं। इस प्रकार से कृष्ण के सभी अभिनयों का वह गोपिकाएं क्या करती हैं, अभिनय करती हैं। तो उसके लिए सारा संसार ही कृष्णमय ही हो गया था, जिसको देखें जिस रूप में देखें कृष्ण के अलावा दूसरा कोई वस्तु उनको दिखाई देता ही नहीं था। तस्माद निज जनित, तस्मात निज दैतान कृष्णाकारान ब्रज स्त्रियो वीक्ष तस्मात माने इस कारण से निज निज दैतान, निज निज माने अपने अपने पतियों को, दैतान माने क्या हुआ, अपने अपने पतियों को कृष्ण आकारान, कृष्ण के आकार वाले ही वृक्ष देख करके। ये सारी गोपिकाएं किसको देखती थी, अपने अपने पतियों को देखती थी, लेकिन अपने अपने पतियों को किस रूप में देखती थी, कृष्ण आकारान, कृष्ण आकार वाले ही अपने पतियों को देख करके क्या करती हैं, देख करके स्व पर नृपति पत्नी नाम अंतर्यामी हरि साक्षात देख करके यही निश्चय करते हैं कि श्री कृष्ण अपने समस्त, अपने और पराये समस्त मानव पति पत्नियों के भीतर अंतर्यामी रूप से विद्यमान हैं, ऐसा समझ करके ही वह उनका आलिंगन करती थी। तो वृंदा भगवान ने कोई गलत काम किया क्या, भगवान ने कहीं कोई कपट छल किया क्या? इसलिए यह तो गोपिकाओं का भाव था और भगवान भी उन्हीं के अपने ही पतियों के रूप में प्रकट होकर के उन रूपों में उनको वह सुख दे देते हैं। अब इस प्रसंग का लगभग लगभग समापन हो रहा है, क्या है, इस प्रसंग का लगभग लगभग समापन हो रहा है कि कहने का भाव अभी तक पूरे इस अध्याय में कि पति के रूप में, पत्नी के रूप में, विषय के रूप में, भोक्ता के रूप में, भोग के रूप में, सब के रूप में एक सत्ता किसकी है, उस परमेश्वर की है। तो आप गले भी मिलते हो, किससे मिलते हो, परमात्मा की पत्नी से। बेटे से गले मिलते तो भी किससे मिलते हो, मैं इसको हमेशा कहता हूं भाई, देखो आप शरीर से गले नहीं मिलते हो, शरीर तो गला लगा ही हुआ है, उसमें क्या, यदि शरीर से मिल रहे तो वस्त्र भी क्या है, मिट्टी का विकार क्या है, बोलो भाई मिट्टी का विकार कौन है, वस्त्र ही नहीं है, और पत्नी भी किसका विकार है, ये देखो इस वस्त्र ने, किसने वस्त्र ने, इस वस्त्र ने देखो यहां से बांह लेके यहां डाल दिया, मेरे गले में क्या कर दिया है, अपनी बांह डाल दिया है, किसने, इस वस्त्र ने, इस वस्त्र के ऊपर ही भावना कर दो तो क्या है, शरीर का मिलन तो एक मिट्टी का मिट्टी में मिलन हो जाएगा, शरीर का मिलन एक मिट्टी का किसमें हो जाएगा, मिट्टी में मिलन, ये भी तो एक बाह है, इस बाह को चाहे जो भी कल्पना कर लो, बेटे की कल्पना कर लो, बाप की कल्पना कर लो, प्रेमिका की कल्पना कर लो, प्रेमी की कल्पना कर लो, ये भी तो एक क्या हो गया, बाह है, एक बाह के अलावा कुछ है, इसके अलावा भावना के अलावा और शरीर में क्या है मेरे को बता दो भाई, मांस के लोथड़े के अलावा इस शरीर में और कुछ है क्या, वह मांस का लोथड़ा तो किसी भी रूप में जगत हो इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उस लोथड़े के रूप में कौन मौजूद है, वह परमात्मा ही मौजूद है। तो आप जिस किसी के भी रूप में मिल रहे हो, किसे मिल रहे हो, उस परमात्मा से ही मिल रहे हो, ऐसी भावना, ऐसा निश्चय आप कर लो, तो फिर आपकी ये तुच्छ वासनाएं, भोगों की वासनाएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। इस पर विचार कल इस चैप्टर का लगभग लगभग अवसान है, विराम है, कि सारा संसार कैसे परमात्मा रूप ही हो सकता है, इस पे और निश्चय करके फिर कृपा आदि पर निश्चय करेंगे। ओम शांति शांति शांति।